समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, कार्यक्रम परिक्रमा में आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। हम आपके लिए लेकर आए हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ है खास उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी याद जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। श्रोताओं, परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूं आकर्षिता सिंह और मेरे साथ हैं मेरी को होस्ट शगुन चोपड़ा। शगुन, आपको भी मेरा नमस्कार।
नमस्कार आकर्षिता, नमस्कार लिसनर्स, गुड डे टू यू ऑल आर लिसनर्स। यू आर ट्यून टू परिक्रमा ऑन 100.1 FM विद शगुन चोपड़ा एंड विद मी टुडे इज आकर्षिता। And today, we are celebrating two very special occasions and more on that after our headlines. Also, we have brought you reports and capsules from Goa, Johannesburg even, and Gujarat as well. Business updates and attributes at the end of the program. Very, very interesting. We have a lot of interesting stuff which we have lined up for you listeners over the next roughly 30 minutes. First, we are beginning with the headlines.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से दक्षिण अफ्रीका में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में ग्लोबल साउथ की चिंताओं, जलवायु केंद्रित पहल और ऊर्जा परिवर्तन पर अपना संबोधन देंगे।
होम मिनिस्टर अमित शाह अनाउंसेस 5-year टारगेट टू मेक BSF मोस्ट मॉडर्न एंड अग्रेसिव फोर्स इन द वर्ल्ड।
56वीं भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आज दूसरा दिन, सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरगन ने ज्यादा बेहतर अंतर्राष्ट्रीय सह निर्माण का आह्वान किया।
5.7 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक जोल्स बांग्लादेश दिस मॉर्निंग, ट्रेमर्स आल्सो फेल्ट अक्रॉस कोलकाता, असम एंड अदर पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर आवर सेगमेंट Dateline India, and as we told you, today we are celebrating two very special occasions. First, the celebration number one, the occasion number one, we are celebrating World Fisheries Day. So, this day is more than a commemoration, it's a reminder of the vital role that fisheries and aquaculture play in feeding the planet, supporting livelihoods and protecting our oceans. And delving first into the first ever celebration of World Fisheries Day, this happened in 1997. For this occasion, delegates from 18 countries met in New Delhi to form the World Fisheries Forum with the mission to champion sustainable fishing and safeguard communities who depend on our oceans. And today, India stands proudly at the forefront of this mission.
क्या आप जानते हैं कि भारत दुनिया में मछली और जलीय कृषि का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश और झींगा निर्यात में वैश्विक अग्रणी देश है। ये क्षेत्र 3 करोड़ से ज्यादा लोगों की आजीविका का साधन है, खासकर ग्रामीण और तटीय क्षेत्रों में।
जी,
हमारे तटीय राज्य जहां 3,400 से ज्यादा मछुआरे गांव हैं, ये भारत के मछली उत्पादन में 72% से ज्यादा और समुद्री खाद्य निर्यात में लगभग 3/4 का योगदान करते हैं। इस वर्ष भारत के समुद्री उत्पादों के निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो 11% की प्रभावशाली वृद्धि है। इस क्षेत्र को बढ़ावा देते हुए 3 सितंबर 2025 को हुई 56वीं GST परिषद की बैठक में मछली के तेल, मछली के अर्क और प्रसंस्कृत मछली तथा झींगा उत्पादों पर GST दरों को 12% से घटाकर 5% करने की मंजूरी दी गई। GST दरों में कमी के कारण भारतीय उपभोक्ताओं के लिए समुद्री खाद्य उत्पाद ज्यादा किफायती होंगे और विदेशों में हमारे निर्यातकों के लिए प्रतिस्पर्धात्मकता भी बढ़ेगी। और शगुन, अगर बात करें तो आज जो हमारे किसान हैं वो सिर्फ खेती और किसानी पर ही निर्भर नहीं है, आज भी बहुत ऐसे उत्पाद आ गए हैं जैसे कि मछली है, उसका भी उत्पादन है, उसमें भी वो अपने मुनाफे कमा रहे हैं। और जैसा कि सरकार ने GST दरों में कटौती की है तो उनको और भी मुनाफा मिलेगा और वो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी जो अपनी उत्पाद है उसको बेच पाएंगे।
एंड वी कैन एविडेंटली यू हैव टोल्ड आवर लिसनर्स अबाउट दैट एज वेल। एंड दिस ईयर्स थीम इट इज इंडियाज ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन, स्ट्रेंथनिंग वैल्यू एडिशन इन सी फूड एक्सपोर्ट्स। दिस रिफ्लेक्ट्स आवर ग्रोइंग लीडरशिप इन द ब्लू इकोनॉमी। And delegations from 27 countries are joining the celebrations in India, marking the country's expanding international partnerships. And we gave you numbers as well. As part of the national event, the Department of Fisheries is releasing the National Framework on Traceability in Fisheries and Aquaculture, a landmark move to ensure safe, sustainable and globally compliant seafood supply chains. So new guidelines and SOPs are also being launched on mariculture, smart and integrated fishing harbours, also reservoir fisheries, coastal aquaculture regulations, providing a strong foundation for sustainable sectoral growth.
और शगुन, भारत की मत्स्य पालन विकास गाथा बेहद रोचक रही है. भारत का मत्स्य उत्पादन 2013-14 में 96 लाख टन से बढ़कर 2024-25 में उल्लेखनीय रूप से 195 लाख टन हो गया है. अकेले अंतर्देशीय मत्स्य पालन में 140% की वृद्धि हुई है. 2024-25 में समुद्री खाद्य निर्यात 62,408 करोड़ तक पहुंच गया, जिससे वैश्विक बाजारों में भारत की स्थिति मजबूत हुई है. और इस प्रगति के पीछे प्रमुख राष्ट्रीय कार्यक्रम भी हैं शगुन. बहुत ढेर सारे ऐसे कार्यक्रम हैं जो सरकार जो है ने बनाए हैं इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, जैसे कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, मत्स्य पालन और जलीय कृषि अवसंरचना विकास कोष, प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि योजना और सतत ईईजेड मत्स्य पालन नियम. तो शगुन, हम देख सकते हैं कि बहुत ढेर सारे ऐसी परियोजनाएं हैं और बहुत ढेर सारे ऐसे कार्यक्रम हैं जो किसानों को सहयोग दे रहे हैं और जिससे वो इस क्षेत्र में इन एक तरीके से आ सके और उनको बढ़ावा मिल सके.
एंड आकर्षिता, इफ वी टॉक अबाउट पीएम मत्स्य संपदा योजना, सिंस 2020 दिस हैज ड्रिवन ट्रांसफॉर्मेटिव ग्रोथ from creating thousands of cold storages and fish transport units to strengthening markets worldwide. And Akashita, under this scheme, 100 coastal fishing villages are being upgraded into climate-resilient coastal fishermen villages. Women are receiving special support, 60% financial assistance, also skill development and easier access to credit. Women are receiving this special support, including the Kisan credit card. And these initiatives, they are ensuring an inclusive and progressive fisheries sector.
और शगुन, एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात ये भी है कि जो हमारे मछुआरे हैं उनकी आबादी कितनी है. अगर इस पे हम जाएंगे तो तभी हम उनके विकास के लिए कुछ कर पाएंगे
जी?
तो एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है समुद्री मत्स्य पालन जनगणना 2025 जो अभी चल रही है. 13 तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 12 लाख परिवारों को कवर करते हुए ये जनगणना भू संदर्भित वास्तविक समय के आंकड़ों के लिए व्यास एनवी और व्यास भारत ऐप जैसे उन्नत डिजिटल उपकरणों का उपयोग करती है. पहली बार ये जनगणना मछुआरों के लिए और उनके परिवार के सामाजिक आर्थिक स्वरूप का मानचित्रण करेगी. इसमें आय और बीमा से लेकर ऋण तक सब कुछ शामिल है, जिससे बेहतर नीतियां और मजबूत कल्याण प्रणालियां संभव होंगी.
वी ऑल्सो हैव टू add here that Akarshita, we have to remember that our oceans, rivers and coastal ecosystems, they are invaluable. They provide food, livelihoods and identity to millions. And India's journey powered by digital innovation, as Akarshita has mentioned, Vyas NV, Vyas Bharat app, and sustainable practices, innovation, community empowerment, this is shaping a brighter and bluer future. Here's to healthy oceans, thriving communities and a sustainable blue economy. Well, now we also have a second occasion that we will celebrate. We are also marking World Television Day. So we are taking you on a journey through time, technology and the screens that have shaped our lives. Television. Yes, that magical box in the corner of our living rooms continues to be the single largest source of video consumption around the world. Screen sizes, they have changed. Certainly they have changed. Content creation may have exploded on countless other platforms as well. But the good old TV, it remains the centerpiece of households, including right here in India.
और शगुन, अगर थोड़ा सा पीछे चले तो हम देख सकते हैं कि आकाशवाणी और दूरदर्शन ने इसमें कितनी अहम भूमिका निभाई है.
ह्यूज कॉन्ट्रीब्यूशन.
और टेलीविजन की बात की जाए तो भारत में सूचना और मनोरंजन के क्षेत्र में आकाशवाणी और दूरदर्शन के कार्यक्रमों का विशेष महत्व रहा है. दूरदर्शन और आकाशवाणी ने अपने कई कार्यक्रमों और धारावाहिकों के माध्यम से जनता का मनोरंजन किया। रामायण और महाभारत जैसे धार्मिक धारावाहिकों ने टेलीविजन को घर घर तक पहुंचा दिया। और शगुन, वो आपको याद ही होगा कि वो कोविड का समय था जब लोगों ने जो है उनकी स्पेशल रिक्वेस्ट पर कुछ प्रोग्राम्स जो है जो प्रसारित होने शुरू हुए, तो हम कह सकते हैं कि
अगेन
जी दूरदर्शन और आकाशवाणी का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा। और उन्होंने अपने कई कार्यक्रम और धारावाहिकों के माध्यम से जनता के बीच खासी लोकप्रियता भी हासिल की है। इन धारावाहिकों में मालगुड़ी डेज, बुनियाद, हम लोग जैसे प्रमुख धारावाहिक शामिल हैं। भारत में टेलीविजन प्रसारण की अगर बात करें शगुन, तो ये 15 सितंबर 1959 में प्रयोगात्मक तौर पर शुरू हुआ था। इसकी शुरुआत ऑल इंडिया रेडियो ने की थी, बाद में 1965 में इसका नियमित प्रसारण शुरू हुआ और दूरदर्शन की शुरुआत हुई। भारत में टेलीविजन नेटवर्क की पहुंच 23 करोड़ घरों में 90 करोड़ दर्शकों तक है और सूचना और प्रसारण मंत्रालय की देखरेख में विश्व टेलीविजन दिवस समूचे देश में मनाया जाता है। टेलीविजन सिर्फ मनोरंजन नहीं है, ये एक साझा सांस्कृतिक क्षण है, एक सामुदायिक आयोजन है।
That refreshing feeling, remembering the good old days. But friends, the 21st century has rewritten the script. Today, a television isn't just a box but that beams shows at us. No, it has become a smart interactive hub. Modern televisions, they let you stream movies, browse the internet, listen to music and even mirror your own smartphone. It's no longer a one-way street here, it's a two-way experience now. Yet through all these changes, smart apps, OTT platforms and endless content, one thing it hasn't changed, Akarshita, TV's power to unite people, inform communities and raise awareness about various issues that truly matters, right?
हाँ, वो कहते हैं कि आज भी जो सिनेमा है वो समाज का आईना है, तो कहीं ना कहीं हम उससे बहुत कुछ सीखते भी हैं। और आज ये विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत जलवायु परिवर्तन, जनस्वास्थ्य, शिक्षा और डिजिटल साक्षरता जैसी गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है। पारंपरिक और आधुनिक दोनों ही प्रकार के टेलीविजन इन संवादों को हमारे घरों तक पहुंचाने में एक सशक्त भूमिका निभाते हैं। आज भी दूरदर्शन देश भर के नागरिकों को जोड़ता रहता है, चाहे वो राष्ट्रीय कार्यक्रमों का कवरेज हो, स्वयं प्रभा जैसे शैक्षिक कार्यक्रम हो या डीडी किसान जैसी पहल। ये चैनल सरकार और जनता के बीच, खासकर ग्रामीण भारत में, एक सेतु बना हुआ है।
Television in India began on 15th September 1959 with a small experimental broadcast by All India Radio in Delhi. Regular daily programs started in 1965, leading to the creation of Doordarshan. Over time, television became a trusted medium for news, education and entertainment, reaching people even in remote villages. A significant chapter in this era was the 1975-76 Satellite Instructional Television Experiment, SITE, conducted by ISRO and NASA, which utilized NASA's ATS-6 satellite to broadcast educational content to 2,400 villages across 6 states, marking one of the world's largest satellite-based learning initiatives. Today, India has over 23 crore TV households and 19 crore viewers, making television one of the country's strongest communication tools. India also has 918 private satellite channels, offering a wide range of content in many languages. The media and entertainment sector is a major part of India's economy, contributing 2.5 trillion rupees in 2024 and is expected to grow even more by 2027 with the rise of digital services, smart TVs, HD broadcasting and OTT platforms. Television continues to serve as one of the most powerful platforms for information and entertainment outreach in India, connecting millions of households and contributing significantly to the objectives of public awareness and participatory governance. With Ashani and Samarth for Parikrama, Bhanu Pratap Singh, Akashvani News, Delhi.
So, what is the purpose of television in the 21st century? Delving on this idea, it's simple. Well, to inform, to entertain, to empower, and to carry forward the legacy of Krishi Darshan, And newsreader Salma Sultan, while embracing the future of streaming, digital content and interactive media, screens may change, but the stories we tell and the truth they carry remain timeless.
और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है।
First, beginning with Goa, the 56th edition of the International Film Festival of India has entered its second day today. Our correspondent has filed this report.
IFFI 2025 saw two important inaugurations today, the Indian Panorama and the Masterclasses. Indian Panorama is a showcase of the best of Indian films, weaving a cinematic tapestry one frame at a time. Filmmaker Muzaffar Ali's 1978 film, Gaman, was also screened today. Later, the filmmaker was in conversation with son and filmmaker Shad Ali. Both shared their cinematic journey and deep insights into their craft.
I didn't become a filmmaker because I had to become something. I became a filmmaker because I had to feel, jise kehte hain, labrez ho jata hai, ek kaifiyat se, and you want to share that with the world. And then realizing, oh, this is a, how do I do it? I don't know this medium, you know. So then what I do is I start sketching it because I think maybe I was not trained to be a filmmaker. So I thought if I sketch it, at least I'll know what goes into a frame.
But far away from all the buzz of films, in a quiet hall at Kala Academy is a one-of-its-kind exhibition. The hall has over 1,000 cameras on display, from the first bellow cameras to flash bulb cameras, from Mamiyas to Yashikas. You name it and it's there. This unique and precious collection is owned by Mr. Sanjeev Devrekar. Mr. Devrekar has been collecting all vintage cameras throughout his life. The first camera he bought was from a flea market in Mumbai in the year 1968, when he was barely a teenager.
Passion ki stage mein jaga aapka
68
tab aapki umar kya rahi hogi
16-17 abhi aaye 74 hai
74 hai 68 se aapne first shuru kiya tha to pehla camera jo aapne apne collection mein rakha wo kaun sa
wo bhi ghar mein wo aisa body camera dekhna dusra 35 ka ek tha liya tha collection pe le liya tha ek 120 pe le china liya tha isliye to rakha hai
acha
main to kya dusre kisi ke kaam ka nahi
Mr. Devrekar's passion for cameras is quite palpable. He proudly shows the prized possessions of his collection that include the Hasselblad camera mounted on a sturdy tripod. Yes, it's the same model that Neil Armstrong took with him to the moon. On display are some old models of projectors as well. The most awe-inspiring thing, though, is that Mr. Devrekar repairs all these cameras by himself and all are in working condition. From a small spy camera about the size of the little finger to the bulky bellow cameras mounted carefully on intimidating tripods. Mr. Devrekar's vintage camera collection is sure to leave you awestruck. If you are a cinema lover, then you ought to be drawn to this vintage collection, for it's the role of the camera that makes the heart beat faster and the flicker of light from projectors that has made stars twinkle on the celluloid, quite literally. This is Saira Mujtaba for Parikrama from IFFI, Goa.
Well, now we will tell you about the ongoing India International Trade Fair 2025 at Bharat Mandapam, New Delhi. The Saras Ajivika Mela is attracting huge crowd. Let us find out why in this report.
With over 300 pavilions showcasing diversity from all over India, the key highlight of the Mela is that it is run entirely by an all-women staff. From Kashmir's Pashmina and Kerala's Kasavu to Ajrak prints of Gujarat and Tripura's bamboo craft, the charm of handmade artistry shines brightest, empowering women and the self-help group behind it. Speaking exclusively to Akashvani News, Garva Nirmala from Gujarat expressed happiness over earning a profit of over 1,60,000 rupees. Another exhibitor from Odisha, Purnima Senapati, said that her products fetched double its original value at the Mela.
मेरी एसएचजी का नाम है आदर्श एसएचजी। हम यहाँ 10 महिलाएं हैं और ये सब होममेड जितना भी सामान लाए हैं सब होममेड है और हेल्दी फूड है, जो रागी की बिस्किट्स है, महुआ और मिलेट्स की कुकीज है।
द इनिशिएटिव रिफ्लेक्ट्स अ लार्जर नेशनल विजन ऑफ एम्पावरिंग लखपति दीदीज एंड नर्चरिंग सेल्फ रिलायंस अमंग वुमेन फ्रॉम रूरल एंड रिमोट रीजन्स। From rhythm in every step to art that breathes, IITF becomes a living poem of India's diversity. With Sanyukta and Komudi, Saklayan Akhtar for Parikrama.
एशियाई शेरों की धरती गुजरात ने एक अद्भुत उपलब्धि हासिल की है। गुजरात के दाहोद जिले के रतनमहल वन्यजीव अभयारण्य में एक जंगली बाघ ने अपना दीर्घकालिक निवास स्थापित कर लिया है। इस शिकारी की शानदार वापसी राज्य के समर्पित संरक्षण प्रयासों की सफलता का एक शक्तिशाली प्रमाण है, जिससे गुजरात के वन्यजीव इतिहास में एक नया गौरवपूर्ण अध्याय शुरू होने जा रहा है।
रतनमहल के जंगल एक बार फिर दहाड़ के लिए तैयार हो चुके हैं। राज्य के वन और पर्यावरण मंत्री अर्जुन मोढ़वाड़िया ने इसे गुजरात के लिए अत्यंत गौरव का क्षण बताते हुए कहा है कि बाघ ने इस अभयारण्य को पिछले 9 महीने से अपना घर बना लिया है। इसकी उपस्थिति पहली बार 22 फरवरी 2025 को एक कैमरा टेप में कैद हुई थी। उन्होंने पुष्टि की है कि गुजरात अब देश का ऐसा एकमात्र राज्य बन गया है जहां सभी 4 प्रमुख बिग कैट्स जैसे शेर, बाघ, तेंदुआ और लकड़बग्घा की उपस्थिति आधिकारिक तौर पर दर्ज हो चुकी है। उन्होंने इस विलुप्त प्राय प्रजाति की सफल वापसी का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के मार्गदर्शन में चलाए जा रहे निरंतर वन संरक्षण कार्यक्रमों को दिया है। पहली बार बाघ देखे जाने के बाद से ही वन विभाग लगातार सतर्क रहा है। उन्होंने पानी की उपलब्धता, आग से बचाव और सबसे महत्वपूर्ण शिकार के लिए पर्याप्त आधार सुनिश्चित करने के लिए उपाय शुरू कर दिए है। गुजरात सरकार अब राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और केंद्र सरकार के साथ मिलकर राज्य में बाघ के लिए एक सुरक्षित और स्थायी भविष्य सुनिश्चित करने की दिशा में काम कर रही है। रतनमहल में जंगली बाघ की यह उपस्थिति केवल एक प्राणी की वापसी नहीं है, बल्कि यह राज्य के वनों के पारिस्थितिक संतुलन की बहाली का संकेत देती है। यह घटना वन्य जीव संरक्षण के वैश्विक मानचित्र पर गुजरात को एक गौरवपूर्ण स्थान भी दिलाती है। परिक्रमा के लिए अहमदाबाद से मैं अपर्णा खूंट।
अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल।
इन बैडमिंटन इंडियाज मेन्स डबल्स पेयर सात्विक साईराज रंकी रेड्डी एंड चिराग शेट्टी वर नॉक्ड आउट ऑफ द ऑस्ट्रेलियन ओपन आफ्टर लूजिंग द क्वार्टर फाइनल मैच टू इंडोनेशियन पेयर अफरजार अल्फियान एंड मोहम्मद शोहिबुल फिक्री बाय 1921-1521। नाउ इन सम बिजनेस न्यूज, benchmark domestic equity indices, the Sensex and Nifty, snapped their two-day winning streak. The Sensex shed 401 points to close at 85,232, while the Nifty dipped 124 points to settle at 26,068. Both the indices ended around 0.5% down after a choppy trading session led by declines in metal and realty stocks.
अब हम याद करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करेंगे उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन।
21st of November is the birth anniversary of the great freedom fighter, revolutionary and poet Kesari Singh Barhat. He was born on November the 21st, 1872 in Shahpura, Rajasthan. Kesari wrote extensively on the theme of nationalism and independence. From 1891, Kesari Singh started working in the service of Maharana of Mewar along with his father Krishna Singh Barhat.
Due to increasing political interference of the British in the administration, Kesari Singh left the service in 1893. He believed that by organizing common soldiers, Rajputs, Charans and other martial races of Rajputana to take up arms, Rajputana would become free from the British rule and this way revolution would spread to the rest of India.
He came into contact with revolutionaries like Ras Bihari Bose and Sachindranath Sanyal. Kesari Singh became a part of the revolutionary party. In 1910, Kesari Singh established Veer Bharat Sabha. He got involved in this work at the beginning of the World War I to prepare for the armed revolution. He sent a parcel of cartridges to the revolutionaries of Banaras and contacted the soldiers of princely states and the British army.
Kesari Singh was arrested by the British government in Shahpura on 21st of March 1914 and was sent to Hazaribagh Central Jail in Bihar. After his release in April 1920, Kesari Singh went to Wardha, where he started a weekly newspaper, Rajasthan Kesari. In 1919, Thakur Kesari Singh Barhat met Gandhiji and on his advice established Rajasthan Seva Sangh at Wardha. Next year, it was shifted to Ajmer. Thakur Kesari Singh Barhat breathed his last on August the 14th, 1941.
21st of November is also the death anniversary of the revolutionary freedom fighter, journalist and legislator Deshpandu Gupta. Born as Ratiram Gupta in 1901 in Panipat, he was given the title Deshpandu by Swami Shraddhanand and Mahatma Gandhi. He was a member of the Arya Samaj.
During his teenage years, he would often take to the streets during protests. After joining the Indian National Congress, he grew closer to the top brass of the party, including Lala Lajpat Rai and Mahatma Gandhi. Lala Lajpat Rai assigned him the task of organizing Congress committees in Karnal. Gupta was a member of the Constituent Assembly. He was a staunch defender of the free press and an advocate for assembly status of the national capital of Delhi.
He started the Rozana Tej newspaper with Swami Shraddhanand. Together with veteran journalist Ramnath Goenka, they bought the Indian News Chronicle in Chennai. Gupta passed away on 21st of November 1951. After his death, Ramnath Goenka renamed the newspaper as the Indian Express.
It was also on 21st November in the year 1909, freedom fighter Anant Lakshman Kanhere shot dead the British officer and collector of Nashik, A.M.T. Jackson, who was suspected to be spying on the activities of Abhinav Bharat Society. Anant Kanhere belonged to Abhinav Bharat Society. People in Nashik arranged a farewell for Jackson at Vijayanand Theatre and staged a drama in his honour.
आज प्रसिद्ध भारतीय पंजाबी गायिका गुरमीत बावा की पुण्यतिथि है. उनका पंजाबी लोक गायन में 45 सेकंड की हेक का रिकॉर्ड था. वे जुगनी गाने वाले सिंगर्स में से एक थी और साथ ही वे पहली पंजाबी महिला गायिका थी जिन्होंने दूरदर्शन पर गाने गाए थे. आइए सुनते हैं उनका ये गीत. भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मान किया.
Well, today we are also celebrating the legacy of Sir C.V. Raman. His groundbreaking discovery on the scattering of light, known as Raman effect, that earned him the Nobel Prize for Physics in 1930, revolutionized our understanding of light. His work teaches us the power of scientific curiosity, endless persistence and innovation, and his experimental and theoretical studies on the diffraction of light by acoustic waves of ultrasonic and hypersonic frequencies. And these are the works. Other work also includes on the effects produced by X-rays on infrared vibrations in crystals exposed to ordinary lights.
जी हाँ, रामन ने उस खोए रास्ते की खोज की और नियमों का प्रतिपादन किया जिनसे स्वतंत्र भारत के विकास और प्रगति का रास्ता खुल गया. आज हिंदी फिल्म जगत में 70 और 80 के दशक की अभिनेत्री हेलन का जन्मदिन है. उन्होंने अपने नृत्य से सिने दर्शकों के बीच अपनी विशिष्ट पहचान बनाई जिसके लिए आज भी लोग उन्हें भूल नहीं पाए हैं. उनको फिल्मों में लाने का श्रेय कुक्कू को जाता है जो स्वयं उन दिनों फिल्मों में नर्तकी के रूप में नजर आती थी. वर्ष 1958 में प्रदर्शित फिल्म हावड़ा ब्रिज हेलन के करियर की अहम फिल्म साबित हुई. इस फिल्म में उन पर फिल्माया ये गीत मेरा नाम चिंचिंचू उन दिनों दर्शकों के बीच काफी मशहूर हुआ.
Well, Well, Helen, a name that embodies grace, talent and timeless charm. Well, initially starting as a background dancer in Awara, the renowned film 1958 film Howrah Bridge propelled her to stardom. And we have other songs as well which made her shine.
हसीना जुल्फों वाले जाने जहां ढूंढती है काफिर आंखें किसका निशान ओ हसीना।
और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए आकर्षिता और शगुन को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की। नमस्कार, नमस्कार।